नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र प्रभु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने कार्यों को करते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला तिमोथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक पौलुस है। और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस ने हमें बताया कि पुरुष को किस प्रकार से प्रार्थना करना है और स्त्री को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए जो आपने हम सबको दान स्वरूप दिया है। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हमसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमें समझ प्रदान करने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, वचन के द्वारा उन्हें धैर्य और हिम्मत दें। हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब आप मेरे साथ पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद को निकाल लीजिए। पहला तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। मेरे मित्रों, ये पद शिक्षा और सिद्धांत से संबंधित हैं। स्मरण रखें कि पौलुस के युग में स्त्रियां गौण धर्मों में अगुवाई की भूमिका निभाती थी। वे यौन संबंधित रंग रैलियों का साधन थी। पौलुस कहता है कि स्त्रियां सामने खड़ी होकर उपदेश न दे, कि उनके शरीर से वासना का प्रदर्शन हो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 34 पद में पौलुस स्त्रियों को अन्य भाषा बोलने के लिए कट्टरता से मना करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस इसलिए कहता है क्योंकि उस समय वहां की जो स्त्रियां अर्थात महिलाएं थी वे गलत रीति से उपयोग की जाती थी और पौलुस नहीं चाहता था कि ये सारी बातें कलीसिया में भी आए और लोग कलीसिया के विश्वासियों को गलत समझें। पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हवा के पाप के द्वारा पाप संसार में प्रवेश कर गया। अब स्त्री हर एक संतान को जन्म देकर पापी को संसार में लाती है। वह संसार को यही दे सकती है, परंतु मरियम प्रभु यीशु को संसार में लाई थी। वह संसार में मुक्तिदाता को लाई थी। तो स्त्रियों का उद्धार कैसे होता है? बच्चे को जन्म देने के द्वारा, क्योंकि मरियम ने इस संसार में एक उद्धारकर्ता को जन्म दिया था। अतः आप संसार में पाप लाने का दोषी न ठहराएं, जब तक कि आप यह नहीं कहें कि स्त्री ही के द्वारा इस संसार को मुक्तिदाता मिला है। मेरे मित्रों, संसार को मुक्तिदाता देने वाला कोई पुरुष नहीं था, यह तो स्त्री ही थी जिसके द्वारा इस संसार का उद्धारकर्ता इस संसार में आया था। परंतु प्रत्येक स्त्री का उद्धार विश्वास ही के द्वारा है, जैसे प्रत्येक पुरुष विश्वास के द्वारा उद्धार पाता है, उसे भी पुरुष के समान ही प्रेम और पवित्रता में विकसित होना आवश्यक है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 3 का विषय है कलीसिया में पदाधिकारी। तो आइए हम देखें कलीसिया में पदाधिकारी एवं प्राचीनों की योग्यताएं। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। ध्यान दीजिए, यह बात सत्य है। इसका अर्थ है कि यह विश्वास योग्य वचन है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि आप इस पर निर्भर कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि यह परखी हुई बात है। तब वह कहता है जो अध्यक्ष होना चाहता है, अर्थात जो बिशप बनना चाहता है। इसमें निहित अर्थ यह है कि बिशप के पद के लिए लोग यत्न करेंगे। मेरे विचार में जिसमें योग्यता हो उसे बिशप पद के लिए यत्न करना भी चाहिए। उसे इस पद की लालसा होना आवश्यक है कि वह परमेश्वर के आत्मा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग कर पाए। यदि परमेश्वर के आत्मा ने उसे यह वरदान नहीं दिया है और उसकी अगुवाई नहीं कर रहा है तो बिशप के पद के लिए यत्न एवं लालसा करना एक महान त्रासदी है। इससे संकेत मिलता है कि कलीसिया में एक नहीं अनेक धर्माध्यक्ष अर्थात बिशप थे। धर्माध्यक्ष विभिन्न विश्वासी समूह इसका अर्थ एवं व्याख्या नाना प्रकार से करते हैं। आरंभिक कलीसिया में पादरी को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। पहला हम देखते हैं प्राचीन, दूसरा चरवाहा, तीसरा अध्यक्ष या पर्यवेक्षक, चौथा सेवक। पासवान को रेवरेंड नहीं कहते थे और न ही कहना चाहिए। रेवरेंड का अर्थ है भय उत्पन्न करने वाला। यह नाम केवल परमेश्वर के लिए काम में लिया जाना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं यह मानकर चल रहा हूं कि प्राचीन और बिशप एक ही व्यक्ति के पदनाम हैं, परंतु कुछ कलीसियाएं मुझसे सहमत नहीं होंगी। मेरी समझ में प्राचीन वह है जो पदभार संभालता है और एक परिपक्व विश्वासी है। बिशप उस पद से संबंधित है जिसका कार्यभार बिशप अर्थात प्राचीन संभालता है। अतः ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के संदर्भ में हैं। आरंभिक कलीसिया के बिशप को अन्य बिशपों या प्राचीनों पर अधिकार नहीं था, उसे कलीसियाओं पर भी अधिकार नहीं था। आप ऐसा अभ्यास परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं देखेंगे। पौलुस ने अनेक कलीसियाएं स्थापित की, परंतु अपने आप को बिशप कभी नहीं कहा या स्वयं को कलीसियाओं का शासक भी नहीं कहा था। इसका अर्थ यह है कि पासवान अर्थात पादरी को कलीसिया की सेवा करना है, उस पर शासन नहीं करना है। पौलुस कहता है कि वह भले काम की इच्छा करता है। कौन? अध्यक्ष। वह उस स्थान की खोज में है जहां से वह कलीसिया की सेवा कर पाए। हम आगे पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस की पत्री 3:2 में, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ये योग्यताएं एक प्राचीन की है, उसे ऐसा होना चाहिए, तब वह एक अध्यक्ष या प्राचीन हो सकता है। लिखा है निर्दोष। कलीसिया में आप कोई भी पद संभालें, आप पर दोष लगाया ही जाएगा, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दोष सच ना हो। निर्दोष का अर्थ है कि उस पर लगाया हुआ दोष सिद्ध ना हो पाए। जब मुझे एक कलीसिया में सेवा करने का अवसर मिला, तो वहां पर एक बड़े प्रचारक ने मुझसे पूछा कि मुझे उस बड़ी कलीसिया में कैसा अनुभव हो रहा है। मैंने कहा, यह एक महान सौभाग्य है, परंतु मैं अपने आप को एक असामान्य स्थिति में पाता हूं। मुझ पर अनेक बातों का दोष लगाया जाता है और मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाता हूं। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि सबके प्रश्नों का उत्तर देता फिरूं। अतः मैं अपने आप को उत्तर देने की अपेक्षा वचन के प्रचार में व्यस्त रखता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आनंद मनाऊं कि दोष सत्य नहीं है, ऐसे पद पर होना अच्छा है। बिशप का यही गुण है, निर्दोष अर्थात दोष लगाने का दोषी ना हो। परंतु आज हमें दुख होता है कि बहुत सारे बिशप निर्दोष नहीं पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है आगे कि एक ही पत्नी का पति, इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, वह विवाहित हो। मेरे विचार में पौलुस के कहने का अर्थ यही है। आप कहेंगे कि पौलुस तो स्वयं विवाहित नहीं था, परंतु मेरा मानना है कि वह विवाहित था और उसकी पत्नी मर चुकी थी, क्योंकि विवाह किए बिना वह महासभा का सदस्य नहीं हो सकता था। उसने दूसरा विवाह इसलिए नहीं किया कि वह अधिकांश समय यात्राओं पर रहता था। मेरे मित्रों, सेवा के आरंभ में मैं अविवाहित था और मेरा एक मित्र सदा मेरा उपहास करते कहता था कि मैं पासवान होने योग्य नहीं हूं, मुझे एक पत्नी का पति होना चाहिए। तथापि मेरे विचार में इसका मुख्य अर्थ है कि बिशप या प्राचीन की दो पत्नियां ना हो। पौलुस के युग में अनेक पत्नियां रखना स्वाभाविक था और दो पत्नियां रखना तो एक आम सी बात थी, परंतु कलीसिया का कोई भी पदाधिकारी एक ही पत्नी का पति हो, तब वह कहता है संयमी। एक प्राचीन को शांत स्वभाव होना है, वह कान का कच्चा ना हो, उसे शांत चित्त होना है, संयमी होना है, बातों को सुनना है। तब कहता है सुशील अर्थात गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति होना है, उसे काम से काम रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह विनोदी अर्थात मजाक ना करे, परंतु उसमें अपने पद की गंभीरता का बोध होना है, ताकि जिस काम को उसे दिया गया है, जिसे उसने लिया है, बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा कर सके। पौलुस कहता है सभ्य। प्राचीन को अपने आचरण में अनुशासित होना है, वह उंगली उठाने वाले काम न करे। मैं एक ऐसे सेवक को जानता हूं जो अपनी लापरवाही के कारण बहुत परेशानी में पड़ गया था। उसके बारे में अफवाह थी कि वह किसी स्त्री के साथ अनुचित संबंध रखता है, परंतु मुझे जितनी भी जानकारियां मिली उनके आधार पर मुझे पूरा विश्वास था कि वह निर्दोष है। वह निश्चय ही बोलने में बहुत लापरवाही करता था और सामाजिक सभाओं में उपहास पूर्वक कहता था कि वह किसी की पत्नी को घर ले जा सकता है, अर्थात वह ले जा रहा है। मेरे प्रियो, वह उसे प्रवेश द्वार तक ले जाकर अलविदा कहता और अपने घर चला जाता था। यह एक मजाक था, यह सब उपहास था, परंतु कुछ लोगों ने उस पर शक किया और अफवाह उड़ा दी। मेरे विचार में किसी पदाधिकारी या सेवक का आचरण निंदा का पात्र नहीं होना है। विनोदी मजाक अच्छा है, परंतु संदिग्ध स्थिति उत्पन्न ना करें ताकि लोग आप पर संदेह करना आरंभ कर दें, आपके ऊपर में बातें उछालना आरंभ कर दें। तब पौलुस कहता है, अतिथि सत्कार करने वाला। प्राचीन में अतिथि सत्कार का गुण हो, वह अपने प्रचारक या किसी को भोजन करवाए। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने अपनी यात्राओं में अनेक अति उत्तम अतिथि सत्कारी विश्वासियों को भी देखा है। कभी कोई आता और मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहता, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? कोई मेरे कमरे में फूल भेजता तो कोई मेरे कमरे में फलों का कटोरा भेजता। एक बार मेरा दांत जो मैंने भरवाया था वह टूट गया, तो मेरे एक मित्र डॉक्टर ने मुझे एक बहुत ही अच्छे दंत विशेषज्ञ के पास भेजा। वह एक अति महान व्यक्ति था। मैं आज भी अपने दांतों के लिए उसी के पास जाना चाहता हूँ। ऐसे सत्कारी मनुष्य संपूर्ण देश में पाए जाते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि एक प्राचीन के गुण क्या क्या होने चाहिए। पौलुस आगे कहता है, सिखाने में निपुण। यह एक बात है जिस पर मैं सबसे अधिक बल देना चाहता हूँ। मेरे विचार में प्राचीन वही हो जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, अन्यथा वह न बने। मैं अपनी कलीसिया में जहां पर मैं जाता हूं वहां के पदाधिकारियों को सदा ही कहता था कि उनके बाइबल ज्ञान की परीक्षा होना चाहिए कि पद के लिए उनकी योग्यता सही है या नहीं, अर्थात आंकी जाए कि वे कौन हैं जो इस पद को ग्रहण कर सकें। मैं इसे संभव तो नहीं बना पाया, परंतु मेरे विचार में यह बिल्कुल ही उचित है। जी हाँ, आज हम कई बार इन सारे विषयों को बहुत हल्के में लेते हैं। किसी को भी हम पद में खड़े कर देते हैं और हम चाहते हैं कि वह कलीसिया की देखभाल करे, अगुवाई करे। परंतु परमेश्वर का दास पौलुस हमें बताता है कि एक प्राचीन की क्या योग्यताएं हैं, किस प्रकार उसे कलीसिया में आगे बढ़ना है और किस प्रकार का जीवन उसे स्वयं जीना है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखेंगे कि प्राचीन में और क्या नहीं होना चाहिए। वह पियक्कड़ ना हो, अर्थात वह शराबी ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, वह झगड़ालू ना हो, धन का लोभी ना हो। पहला तीमुथियुस के पत्र 6 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है कि धन का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है। अपना पैसा हो या कलीसिया का पैसा, उसका दुरुपयोग उसे परेशानी में डाल देगा, और इसलिए इन सारी बातों को एक प्राचीन के जीवन में नहीं होना है। वह पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, और न ही धन का लोभी हो। मेरे प्रियो, क्या ही सलीनता से पौलुस ने इस पत्री को लिखा है ताकि हम अपनी कलीसिया को संवार सकें। तब वह आगे भी कहता है कि कोमल अर्थात जो तर्क को समझता हो, जिससे आप कुछ कहें तो वह उसे तर्कपूर्ण रूप से समझे। आगे कहता है कि झगड़ालू, कलीसिया में उत्पात मचाने वालों को पदाधिकारी न बनाया जाए। कई बार लोग बाहरी उनके ज्ञान को और योग्यता को देख करके अधिकारी बना देते हैं, परंतु वे आंतरिक जीवन को नहीं परखते, नहीं देखते, और यही कारण है कि कलीसियाओं में समस्याएं उत्पन्न होती है। पौलुस कहता है कि कोई भी प्राचीन झगड़ालू ना हो। तब वह कहता है कि धन का लोभी, जी हां, वह पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति ना हो। वचन कहता है कि जो पैसों के पीछे भागता है वह एक मूर्ति पूजा करता है। कहने का मतलब है कि धन दौलत उसका मूर्ति है जिसके पीछे वह भागता फिरता रहता है। आज बहुत सारी कलीसियाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इसका कारण यही है कि जो भी पदाधिकारी कार्यभार को संभालते हैं वे परमेश्वर की इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, और यही कारण है कि वे धन के लोभी बन जाते हैं और कलीसियाओं के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। पहला तीमुथियुस के पत्री 3:4 में पौलुस कहता है, अपने घर पर अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ध्यान दीजिए कि प्राचीन अपने परिवार पर अधिकार रखता हो, तानाशाह नहीं प्रबंधक हो। बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरीके से करता है वही व्यक्ति प्राचीन बने, ताकि कलीसिया की भी देखभाल वह अच्छी रीति से कर पाएगा। पहला तीमुथियुस के पत्री 3:5 में लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। जी हाँ, यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का ही संचालन न कर पाए तो वह कलीसिया का संचालन कैसे करेगा। इसीलिए चाहिए कि वह अपने परिवार को संभालने वाला, उसका संचालन अच्छी रीति से करने वाला व्यक्ति हो। आगे लिखा है पहला तीमुथियुस के पत्री 3:6 में, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नया चेला अर्थात जिसका हाल ही में मन परिवर्तन हुआ है और उसने नए रीति से प्रभु को विश्वास किया है या नया विश्वासी है। कभी कभी एक सप्ताह पूर्व ही मन फिराने वाले को पदभार सौंप दिया जाता है। वह अभी इसके योग्य भी नहीं है, वह कुछ भी बातों को कलीसिया के विषय में नहीं जानता है, फिर भी उसे कार्यभार सौंप दिया जाता है जिसके कारण से वह शैतान के द्वारा बहकाया और फुसलाया जाता है और वह पाप में गिर जाता है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि नए विश्वासियों को कोई भी पदभार ना दिया जाए। वे नए विश्वासी धर्म सिद्धांतों पर अपना विचार व्यक्त करते हैं तो मसीह के काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि सच क्या है। आगे कहता है, अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। शैतान का सबसे बड़ा पाप था उसका घमंड। यही प्रचारकों और कलीसिया के पदाधिकारियों का भी पाप है। यह हमारे लिए एक संकट है, परंतु कलीसिया में इसका होना निंदा की बात है। मेरे प्रियो, पौलुस चाहता है कि कलीसिया में किसी भी प्रकार का घमंड ना आए, परंतु संयम, नम्रता, धीरज के साथ परमेश्वर के कार्य को किया जाए। और इसीलिए वह चाहता है कि प्रत्येक प्राचीन या परमेश्वर का सेवक इन गुणों से परिपूर्ण हो, ताकि इसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो सके। पहला तीमुथियुस के पत्री 3:7 में हम पढ़ते हैं, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। लिखा है कि बाहर वालों में अर्थात कलीसिया से जो बाहर हैं, जो समाज में हैं, ऐसे लोगों के बीच में भी इसका नाम सुनाम हो। कहने का तात्पर्य है कि अच्छी गवाही हो, गलत काम करने के लिए जो जाना जाता हो ऐसा नहीं, या झूठ बोलता हो तो वह इस योग्य नहीं है। जी हाँ, उसे पदभार ना सौंपा जाए, वह तो वास्तव में शैतान का प्रत्याशी है। वह प्रभु के स्थान पर शैतान का प्रतिनिधित्व करेगा। मेरे प्रियो, आज हम किसी भी प्राचीन को कलीसिया के लिए यदि चयन करते हैं, उसे पदभार देते हैं, तो सबसे पहले आप तीमुथियुस की पहली पत्री उसके तीसरे अध्याय उसके 1-7 पद या 1-13 पद को अवश्य पढ़ लें। आप जान लें कि किस प्रकार के व्यक्ति को आप एक पदाधिकारी के रूप में रख सकते हैं और इन गुणों को देखें कि क्या उसके अंदर में है। यदि नहीं पाए जाते हैं तो कृपा करके आप उन्हें उस पद पर न रखें, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको परमेश्वर के कार्य के लिए रखना है, न कि किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए। कई बार हम ऐसी भूल कर बैठते हैं और इसके कारण से कलीसिया में समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहां पर देख रहे हैं कि कलीसिया में एक पदाधिकारी अर्थात प्राचीन या बिशप को रखने के लिए हमें किस किस प्रकार की योग्यताओं को देखना है, ताकि इसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिल सके। मेरे मित्रों, मैं समझता हूं कि आपने इन सारी बातों को भलीभांति समझ लिया है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप प्रभु के वचन में बने रहें, उससे प्रेम करें, उसकी संगति में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
बच्चों को रख